आज हमारे यहाँ पर प्रतिदिन मंदिर में भी सुबह और शाम को भगवत गीता और भागवतम पे कथा की जाती है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे मंदिर में श्रीमद् भागवत पे चर्चा होती है और शाम को भगवत गीता पर। और हर सोमवार को यहाँ पर ऑडिटोरियम में विशेष रूप से भक्तों के लिए जो बाहर रहते हैं, जो हम हर रोज नहीं आ पाते, उनके लिए विशेष रूप से जो है सोमवार को यहाँ पे कथा की जाती है। और यहाँ पे आने से ये लाभ है कि यहाँ पे आने से आपको बहुत सारे भक्तों का और भी एसोसिएशन मिलता है जो आपके जैसे ही हैं, बाहर रहते हैं, उनके साथ आप रिलेशन बना सकते हैं। बाहर के संसार में हर व्यक्ति अच्छे रिलेशन चाहता है ना, वो सोचता है कि हर व्यक्ति के साथ उसका अच्छा संबंध हो, है ना, हर व्यक्ति उसे प्रेम से देखे। परंतु कोई प्रेम से बात करने वाला संसार में है नहीं, सब लोग क्या हैं, हाँ सब लोग मतलब ही हैं, सब अपने विषय में सोचते हैं, जैसी मतलब पूरा हुआ फिर उनके साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा ही होता है ना। किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं है, सबको एक सब लोग मोटिवेटेड हैं। आपसे अगर कोई संबंध स्थापित कर रहा है तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण है ना, कि आगे जाके आज मैं इसको हेल्प करूंगा तो आगे ये मेरी हेल्प करेगा, है ना। और जब हम देखते उसमें, और इसको पता कैसे चलता है, जब दो दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त जब उसमें आता है, परेशानी में आता है, और दूसरी उसकी हेल्प नहीं करता, तो जो परेशानी में था बाद में वो उसके साथ मित्रता छोड़ देता है, इसने मेरी सहायता नहीं करी थी, क्योंकि उसने इस व्यक्ति ने मित्रता स्थापित ही इसलिए करी थी कि जब समस्या आएगी तो मेरी सहायता करेगा। यहाँ पे आके पता लगता है इस संसार में हर व्यक्ति ऐसे ही है। थोड़ा बहुत जो असली प्रेम नजर आता है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा लटकता झलकता, जो थोड़ा बहुत असली प्रेम जो है, जो भगवान के उसकी जो झलक नजर आती है संसार में, वो पता है कहाँ नजर आती है, कौन बताएगा आप में से, भक्तों के एसोसिएशन में कहाँ उसमें झलक नहीं, उसमें तो पूरा अपार होता है। कौन बोला, हाँ माता का जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, उसमें असली प्रेम की झलक होती है। माता जब पुत्र की सेवा करती है वो ये सोच के नहीं करती कि ये कल को मुझे सुख देगा, जब वो सुसु करता है बेड के ऊपर तो सोचती नहीं है कि आज मैं इसका साफ करूंगी तो बुढ़ापे में ये मेरी हेल्प करेगा, नहीं ऐसा नहीं सोचती। बल्कि कई माताओं को तो हमने सुना है ऐसा कि क्या पता बुढ़ापे में हमारी सहायता करे, सेवा करेगा नहीं करेगा, परंतु अभी तो हम करेंगे, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल होता है। ऑफ कोर्स क्यों हम झलक इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो जब बेटा बड़ा हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, और उसके बाद वो अगर काम ना करें तो सुबह से लेकर रात तक वही माँ उसको ताने देती है ना, परंतु फिर भी वो ताने भी इसलिए देती है कि इसका कुछ भला हो जाए, है ना, पर वो फिर भी झलक है, असली प्रेम नहीं है वहां पे। आवश्यकता पड़ने पे माता छोड़ भी देती है पुत्र को, है ना, पर भगवान जो है वो कभी नहीं छोड़ते। हम भगवान, हम बिल्कुल क्या बोलेंगे, रिबेलियस को क्या बोलते हैं, रिबेलियस को, हाँ हम भगवान के साथ विरोध करके जो है भगवान के धाम से यहाँ पे आए हैं, और हाँ ईर्षा द्वेष विरोध करके जो है भगवान के धाम से यहाँ पे आ गए छोड़ के, और यहाँ पे हम अपने इंजॉय करना चाहते हैं, भगवान से सेपरेटली इंजॉय करना चाहते हैं, और भगवान को मानते भी नहीं है, कई लोग मानते हैं ना, कहते हैं भगवान है ही नहीं, परंतु भगवान इतना प्रेमी है, इतने प्रेमी हैं, वो सब जीवात्माओं के साथ रहते हैं, हर समय रहते हैं हम हृदय में परमात्मा के रूप में। सब बोलते हैं ना अपने हृदय में देखो भगवान है, झूठ नहीं बोलते हैं, हृदय में भगवान सबके साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो असली प्रेम करते हैं, वो छोड़ते नहीं है कभी भी। आप कुत्ते के शरीर में भी जाते हो तो कुत्ते के शरीर में भगवान जाते हैं साथ में आपके, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। बाकी इस संसार में कहीं पे असली संबंध मिलता नहीं है, पर यदि आप ऐसे एसोसिएशन में आएंगे जहां पे भक्त लोग हैं, वहां पर आप देखेंगे आपको असली प्रेम का जो है वो आपको नजर आना शुरू होगा, असली प्रेम नजर आना शुरू होगा। क्योंकि जब आपसे एक भक्त कहेगा कि आप कथा सुनने आइए, उसमें उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए कह रहा है कि आप कथा सुनेंगे तो आपका भला होगा। हमारे भक्त लोग हैं मंदिर में, वो सड़कों पे जाते हैं पुस्तकें लेके, और सर्दी गर्मी धूप बरसात सबको सहन करते हुए पुस्तकें बांटते हैं, बताइए उसका, उसमें उनको क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई कह सकता है धन कमाने के लिए करते हैं। अगर धन कमाने के लिए करते होते वो एमटेक करने के बाद सड़क पे किताबें लेके थोड़ा नाचते। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रेम होता है भक्तों के हृदय में। दूसरों को बता रहे हैं कि आप ये लीजिए पुस्तक, आपका भी, हमारा उद्धार हुआ, आपका भी होगा। हम सड़क पे होके भी इतने खुश हैं जितने आप कार में बैठ के खुशी नहीं है, क्योंकि हम भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। तो आप भी इस खुशी को अपनाइए, भले ही आप कार में बैठे रहिए, पर आप कम से कम इसको पढ़िए, आपको पता लगेगा असली सुख क्या है, असली प्रेम क्या होता है, असली रिलेशनशिप क्या होती है। बाहर के संसार में यदि किसी के साथ थोड़ा सा वैर भाव हो जाए, कुछ हो जाए, तो रिलेशन खत्म हो जाता है। और फिर वो कैसा होता है रिलेशन, अगर दोबारा स्टैब्लिश भी होता है तो कहते हैं उसमें क्या होती है, नोट्स होते हैं उसमें, गांठ लग जाती है उसमें, है ना, पहले जैसा रिलेशन नहीं रहता। और भक्तों के समाज में देखा गया कई सालों के बीच में कि यदि कोई भक्त भक्तों को छोड़ के चला जाता है, भक्तों को बदनामी भी करता है बाहर जाके, बहुत भक्तों को बुरा भला करता है, भक्तों को नुकसान पहुंचाता है, और जैसी वो व्यक्ति जो नुकसान पहुंचा रहा था, सब कुछ कर रहा था, थोड़ी सी उसकी समस्या होती है तो भक्त लोग फिर उसके पास पहुंच जाते हैं, प्रभु हमने आपको पहले ही कहा था बाहर के संसार में समस्या है, जबकि इसने इतना कष्ट दिया भक्तों को। एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, उसने क्या किया, हम नाम नहीं बताएंगे किसी का भी यहाँ पे, वो भक्त था, उसने क्या किया, हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी को बहुत कष्ट पहुंचाया और मारने के लिए भी गया। उसने सोचा कि ये व्यक्ति जो है वो अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता था, परंतु क्योंकि उस सन्यासी होने के कारण उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो इसको बहुत दुख हुआ कि मेरा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो रहा, और वो उनको मारने के लिए भी गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में क्योंकि भक्तों के साथ उसने गलत तरीके से व्यवहार किया, तो उसकी बहुत दुर्गति हुई संसार में, बहुत दुर्गति हुई। जब बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई तो वही भक्त जिस वही सन्यासी जिसको मारने के लिए गए थे, वो उसके घर पे गए, बोले कि देखो इस संसार में दुख ही दुख है, आप आज हम आपको सेवा में लगाएंगे। और जब वो आ गए तो सब भक्तों ने बोला नहीं नहीं इनको मत लो, ये पहले भी गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे भक्तों के साथ, आपके साथ। भक्त लोग इसलिए नहीं कह रहे थे कि हमारे साथ व्यवहार गलत किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, उन्होंने कहा नहीं फिर से सेवा में लगाओ, और दोबारा उनको सेवा में लगाया। अब उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि अब वो कभी नहीं छोड़ सकते, और वो समझ गए। परंतु बाहर के संसार में कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो असली रिलेशनशिप, असली संबंध, असली प्रेम, असली ट्रस्ट जो है वो भक्तों के बीच में होता है, बाहर कहीं ट्रस्ट नहीं है किसी को किसी में। एक शिष्य को अपने गुरु पे पूरा विश्वास होता है कि हमारे गुरु हमारे को भगवान के धाम लेके जाएंगे, और इस विश्वास के ऊपर गुरु उसको कुछ भी कहें वो करने को तैयार होता है। गुरु अगर कहें कि सर्दी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आप गमछा पहन के सड़क पे खड़े हो जाओ, तो खड़ा रहेगा और वहां जाके जब करो करता रहेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ऐसा करने से मेरा लाभ होगा। ये असली ट्रस्ट होता है भक्तों के बीच में। और हम देखते हैं कि जब नया नया आता है वो भी भक्तों के बीच में ट्रस्ट करता है, वो जब देखता है कि भक्त बिल्कुल क्या है, वो सेल्फलेस हैं, सिर्फ हमारे लिए बोल रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे रेगुलर आएंगे तो आपका क्या होगा कि भक्तों के साथ संबंध होगा। हमें याद है जब हम छोटे थे तो हमने एक बाहर का सॉन्ग सुना था जिसमें वो व्यक्ति बोलता है कि जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बहुत सुंदर था वो, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, नहीं चाहिए ये धन दौलत, कृष्ण का परिवार काफी है। कृष्ण का परिवार मतलब भक्तों का, बोल रहे हैं कि ये जो जगत के रिश्तेदार हैं इन्होंने क्या कर रखा है, माया का जाल बिछा रखा है। जब हमारे पास धन होता है तो हमारे पास आते हैं, जब धन नहीं होता तो चले जाते हैं, है ना। अगर हम इनके साथ थोड़ा सा सही बिहेव करते हैं तो ये भी करते हैं, थोड़ी सी कोई बात होती है तो झगड़ा कर लेते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ कहानी बनी रहती है, नोक झोंक परिवार में चलती रहती है, होती रहती है ना। आपने ऐसा कोई परिवार देखा यहाँ पे हमेशा सब कुछ सुखी रहते हो, कोई झगड़ा ही ना करता आपस में, माया का जाल। परंतु फिर वो क्या बोलता है, इसलिए नहीं चाहिए संसार का धन दौलत, हमें क्या चाहिए? आपका परिवार, मतलब भक्तों का परिवार, क्योंकि इसमें ऐसी समस्याएं नहीं है। यहाँ पे कोई किसी से झगड़ा नहीं, झगड़ा होता है, आप कहेंगे भैया आप बोल दिए झगड़ा ही नहीं होता, क्यों नहीं होता झगड़ा? यहाँ पे भी झगड़ा होता है, परंतु यहाँ पे झगड़े का जो मकसद होता है क्या होता है? ये होता है मकसद। और इसलिए झगड़ा होने के बाद भी भक्त लोग आपस में कुछ बुरा नहीं मानते। जैसे आप, आपको एग्जांपल देते हैं भक्तों के बीच में कैसे झगड़ा होता है। मंदिर में गए भक्त लोग, माताएं गई कुकिंग कर रही हैं, एक माता बोल रही है कि ये जो आपने कुकिंग करी है इसमें चीनी और डालनी चाहिए थी। कह रहे नहीं नहीं इसमें कम डालनी चाहिए, कृष्ण को सही नहीं लगेगी। इस बात पर झगड़ा होता है। और बाद में फिर जब भोग लग जाता है भगवान को, फिर जब वो स्वाद कर लेते हैं प्रसाद का, कहते हैं प्रसाद तो बहुत अच्छा बना था, सारा झगड़ा खत्म। तो ये भक्तों का जो झगड़ा होता है वो किस किस, वो भी झगड़ा भी सेंटर्ड होता है कृष्ण पे। हमने देखा है ऐसा कई बार भक्त लोग झगड़ा करते हैं। एक बार एक भक्त हमसे बहुत नाराज हो गए, बहुत एक्सट्रीमली नाराज हो गए, क्योंकि वो कुछ बोल रहे थे जो मुझे फॉलो करना चाहिए था, वो सीनियर डिवोटी थे और हमारे गुरु महाराज ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी जो मुझे करनी थी। अब तो मैं बीच में फंस गया, ये भी मुझसे सीनियर है, इधर मेरे को गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया है, और इस समय गुरु महाराज यहाँ पे है नहीं जो मैं कहूँ कि महाराज से पूछ लो आप। तो बहुत नाराज हो गए, वो बोल रहे हैं कि इस समय आवश्यकता आप कर नहीं रहे। तो मैंने फिर फटाफट उस समय जो सेवा थी उसको किया, प्रभु जी के पास गया। वो प्रभु जी इतने नाराज हो गए, क्योंकि वो भी जो सेवा हो क्या इमरजेंसी थी, इधर भी इमरजेंसी, फंस गए बीच में, धर्म क्या बोलते हैं उसको, धर्म संकट पड़ गया हमारे ऊपर तो बहुत। और वो पूरे नाराज थे, बोल रहे थे आज के बाद हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो बहुत नाराज हो गए, पूरे लाल हो गए, कह रहे इतनी इंपॉर्टेंट सेवा है और आप जा नहीं रहे, कीर्तन में जाना था वहाँ पे। तो फिर मैं सब कुछ करके जब वो निकल गए तो मैं रास्ते में उनके पास पहुँचा, और जब मैं रास्ते में उनको मिला, उनके पास ही जाके बैठा, और जाके उनके पास बैठा, और मैंने, उन्होंने मेरे से बात भी नहीं करी, दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आपको मालूम है भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप धाम महात्मा में ऐसा, मतलब हमने एक कृष्ण चर्चा बोली, मैंने एक प्रश्न बोला, तो इतने प्रसन्न हुए, वो झगड़ा इतने गुस्से थे सब भूल गए, और फिर वो एक घंटे तक मेरे को कथा ही सुनाते रहे। तो ये भक्तों का परिवार है। भक्तों के परिवार में यदि झगड़ा भी होता है तो ऐसा होता है, प्रेम से भरा रहता है, हमेशा प्रेम है। आज झगड़ा हुआ तो पता नहीं होगा शाम तक। भक्तों के बीच में क्रोध कैसा होता है आपको बताते हैं। जैसे जो एकदम रजोगुणी व्यक्ति होगा ना, रजोगुणी व्यक्ति को अगर गुस्सा आएगा तो उसका गुस्सा मालूम है कैसा होता है? पत्थर पे लकीर के जैसा, छूटेगा नहीं। क्षत्रिय जैसे गुस्सा हो जाता है तो एंड तक बदला लेने के लिए रहते हैं, है ना, पत्थर पे लकीर। और जो थोड़ा सत्व गुण में होगा उसका झगड़ा का, उसका गुस्सा कैसा होगा मालूम है आपको? हाँ नहीं, सत्वगुणी व्यक्ति का ऐसा नहीं होता। पानी पे लकीर सत्वगुणी व्यक्ति का नहीं होता, मिट्टी पे लकीर जो कि हट सकती है आराम से। और परंतु जो भक्त होते हैं उनका गुस्सा होता है बिल्कुल पानी पे लकीर, आया और खत्म, इमीडिएटली खत्म। प्रभुपाद जी के शिष्य बताते थे कि जब प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते थे कई बार, तो जैसे बहुत एकदम रेड हो गए, एकदम रेड होने के बाद गुस्से में, जब जैसी वो व्यक्ति से बात खत्म, जो गुस्से वाली बात थी वो खत्म हुई, तो कहते हैं ओके ठीक है अभी हम सब बैठेंगे और कथा करेंगे, बिल्कुल चेंज, रेड भी कलर भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा और मूड भी। कभी आपने देखा संसार में किसी को एकदम गुस्से में हो और फिर एकदम नॉर्मल हो जाए एक सेकेंड में? नहीं होता ऐसा। तो इसीलिए अगर हमारे को रिलेशन बनाने हैं तो भक्तों के बीच में बनाने चाहिए। हमारी माता जी जो हैं, जब मैं यहाँ पे आ रहा था वो मुझे बोल रही थी कि तुम छोड़ के जा रहे हो हमें, मैं घर में अकेला था, तो मैं छोड़ के जा रहे हो, तुमने सोचा कि हमारा क्या होगा? मैंने कहा सारे विश्व का पालन कर रहे हैं कृष्ण, आपका भी करेंगे। मैं तो रोज ऑफिस जाता हूँ, अगर रास्ते में मेरा अभी दो थोड़े दिन जिस ट्रेन में मैं जाता था उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन जो है ट्रैक से उतर गई थी, उन्हीं दिनों ट्रैक से उतर गई थी और बहुत आगे तक बिना ट्रैक की ट्रेन भागती रही और सब लोग डर गए, कई लोग बेहोश हो गए, सब सोचे थे मर जाएंगे, कोई मरा नहीं। और क्योंकि हम उसमें कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग बहुत सारे, तो हम लोग ऑफिस जाते थे कीर्तन करते हुए जाते थे, तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि देखो अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, बस बच गए, पलटी नहीं, पलट आएगी तो मर जाऊंगा, फिर आपका आपको कौन देखेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं भगवान के धाम में रहूंगा, भक्तों के संग में रहूंगा, वहां मरूंगा तो अच्छा रहेगा ना, मैं भी सही जगह जाऊंगा, आपको भी लाभ होगा। पर वो उस समय तो गुस्से में कुछ बोली नहीं, पर वो भी मेरी माता जी भी जो है भक्त, बहुत ही जो है भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त हैं वो, उस समय वो जागृत नहीं हुई थी उनकी भक्ति, तो उस समय तो वो कहते हैं ठीक है जाओ आप, तुम्हें जो करना करो, और मैं चला आया। एक हफ्ते बाद वो आई मुझे लेने के लिए, आप चलोगे नहीं, मैंने बोला कि थोड़े टाइम और रुक के फिर आऊँगा, और थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही भक्त बन गई। और अब वो क्या कहती हैं, अब वो उनको अपने रिश्तेदारों में जाना, कहीं शादियों में जाना, जो होता ना सब लोग जाते हैं शादी में, उनको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। एक बार उनकी सिस्टर के घर में, उनकी सिस्टर की जो बेटी है उसकी, उसको क्या कहते हैं, भांजी कहते हैं ना, उनकी भांजी की मैरिज थी, और यहाँ पे राधाअष्टमी थी, मेरी माता जी उस मैरिज में ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि अब उनको लगा कि ये सारी जो रिलेशनशिप है ये क्या है, बोगस है। और फिर अब वो मुझे प्रवचन दे रही हैं, कभी मत आना, क्योंकि ये भक्तों के समाज में जो सुख है वो कहीं नहीं हो सकता, और तुम यहाँ पे आओगे तो अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला फिर आपको तो आप पास बेटा नहीं, अगर मैं नहीं आऊँगा तो, मैंने उनसे पूछा था कि मैं आप कहो तो आ जाऊँगा, अब आप भक्त बन गए हो, नहीं नहीं अब तो मेरे बहुत सारे बेटे हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारी माता जी, उर्मिला माता जी, इनके भी बहुत सारे बेटे हैं, पूरे ब्रह्मचारी आश्रम इनका बेटा है। तो इस प्रकार से जो भक्तों के बीच में संबंध होते हैं वो कहीं नहीं होते। यहाँ पे आप देखोगे हमारे भक्तों के समाज है, यहाँ पे मंदिर में कृष्णांगनी माता जी हैं, उर्मिला माता जी हैं, हमारा हम देखें तो हम जन्म से इनके साथ कोई संबंध नहीं है, ना परिवार के रिलेशन से कोई संबंध है, पर अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा इनसे प्रेम है, इनको भी अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा हमसे प्रेम है। क्यों? क्योंकि असली प्रेम संबंध कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर कृष्ण सेंटर्ड हो, जहाँ पर कृष्ण सेंटर नहीं है वहाँ पर क्या है, माया का जाल, ऋषारों ने बिछाया जाल माया का। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे आते रहिए, भक्तों का संग कीजिए, और आप धीरे धीरे खुद समझेंगे कि कितना इसमें आनंद है। कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो जाना नहीं चाहता, और अगर चला भी जाता है उसको लगता है शायद बाहर सुख मिलेगा, जाके फिर थोड़े दिनों बाद वापस आ जाता है। कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कि जो छोड़ के गया और वापस नहीं आया, भक्तों के संबंध रिलेशन को, परिवार को छोड़ा उसने और फिर वापस नहीं आया, ऐसा हमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। और जो नहीं आ रहा होता और वो अगर कष्ट में पड़े आता तो फिर भक्त जाके उसको ले आते हैं। तो असली रिलेशनशिप है यहां पे। हमें भगवद गीता का श्लोक लेना है, तभी हम भगवद गीता के श्लोक पे जाएंगे। सब लोग मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबके पास भगवद गीता है, तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे भगवद गीता का, अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। और जिनके पास नहीं है वो अपने पास बैठे हुए किसी भक्त के साथ शेयर कर सकते हैं। चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्ताम्यम कर्ता चतुर्वर्णायम मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारम अव्ययम् चतुर्वर्णमया सृष्टम् गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों को, प्रकृति के तीनों गुणों, सब बोले मैं सत, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। फिर अभी मैं पढ़ूंगा अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार कर्म द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तीनों तीनों गुणों के अनुसार, आप जानते हैं ना तीन गुण कौन से हैं, भारत के अंदर सब जानते हैं, है ना। तो इन तीनों गुणों के अनुसार समाज में भगवान ने चार विभागों की रचना करी है। और भगवान कह रहे हैं ये चार विभाग जो हैं, मैं इनका क्रिएटर हूँ, मैंने क्रिएशन की है इसकी, परंतु फिर भी तुम ये जान लो कि मैं अकर्ता हूँ, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, खुद इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, अव्यय हूँ, मैं अपरिवर्तनीय हूँ, चेंज नहीं हो सकता मैं ये सब, क्योंकि जो लोग कर गुणों के अनुसार सेट किए गए हैं वो चेंज हो सकते हैं, अपने गुण चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं होता। तात्पर्य वह भगवान शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है, अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था की सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग का वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि उन बद्ध जीवों में वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज की तुल्य है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि उन बद्ध जीवों की तरह नहीं है जिनमें से एक अंश मनुष्य समाज के रूप में है। इसका मतलब ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि बद्ध जीव जितने भी ये हैं, पशु भी हैं, है ना, पशु पक्षी कीड़े और जल में रहने वाले जीव, ये सब के सब जो हैं ये सब बद्ध जीव हैं, उनमें से एक अंश मनुष्य समाज है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं बहुत अद्भुत तरीके से, मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज की तुल्य है, किंतु पशुओं मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपरयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है जिसमें क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुँच जाता है वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम नरसिंह वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो अभी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम इन श्लोकों के असली अर्थ को समझ सकते हैं। अभी हम लोग अभी तक सुनते आए हैं, कई भक्तों से आपने सुना होगा भगवद गीता, अगर आप लोगों ने पूरी पढ़ी है तो आपने भगवद गीता में पढ़ा होगा, भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति जो है वो मुक्ति देने वाले हैं, परंतु कर्म बंधन का कारण है। बोलते हैं ना भगवान भगवद गीता में। हाँ, ज्ञान और भक्ति जो है फिर भी मुक्ति देने वाले हैं संसार बंधन से, परंतु कर्म जो है बंधन का कारण है। बोलते हैं ना भगवान। और यहाँ पे भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने इन कर्मों के बंधन की रचना करी है। बोल रहे ना भगवान यहाँ पे, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चार जो कैटेगरीज हैं मनुष्य जाति में मैंने बनाई हैं। तो मतलब कि आपने ये क्रिएशन करी है कि इसमें फंसे लोग, है ना? प्रश्न उठता है ना कि आप जब कह रहे हो कि ज्ञान और भक्ति सही है तो उसके लिए आप क्रिएशन करते हैं, ये आपने ये अद्भुत क्रिएशन क्यों करी है, उठता है ना प्रश्न। और हम समझ भी नहीं पाते कभी, हम इसको पढ़ते 4, 5, 10, 20 श्लोक पढ़ते तो शायद ना समझ पाते हो, फिर शायद पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद कुछ बात समझ में आती। प्रभुपाद का अद्भुत वादान्यता है कि प्रभुपाद एक ही परपट के अंदर सब कुछ बता देते हैं। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि मैं इसका सृष्टा हूं, मैंने क्रिएशन करी है, पर मैंने ये नहीं कहा कि सारे जीव इसके अंदर घुस जाओ। भाई क्या करा, सरकार ने जेल बनाई और सरकार प्रवचन दे रही है जेल में किसी को नहीं जाना चाहिए। कोई जाके प्रश्न बोले कि भैया फिर आपने जेल बनाई क्यों है? उन लोगों के लिए बनाई है जो जाना चाहते हैं गलत काम करके। मैंने नहीं कहा, सरकार नहीं कह रही कि सब जाएं जेल में। सरकार चाहती है क्या जेल में सब जाएं? किस देश की सरकार चाहती होगी? कोई नहीं चाहती, परंतु फिर भी बनाई। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो जाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये क्रिएशन इसलिए करी है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे भी जीव हैं संसार में जो इन गुणों के अंदर जाना चाहते हैं, इन गुणों के अंदर एक्ट करना चाहते हैं, सत्व गुण में, रज गुण में, तमो गुण में। इसलिए मैंने ये क्रिएशन करी है। और मैंने क्रिएशन करी है इसलिए नहीं कि सब जाए इसमें, कुछ हैं मूर्ख लोग बैठे हुए संसार में, हम जैसे, हम भी सब, हम भी तो आए यहां पे। तो इसलिए भगवान ने क्रिएशन करी। और प्रभुपाद इस बात को क्लियर कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाते इसको पढ़ के सिर्फ श्लोक को। भगवान क्या बेवकूफ बना रहे हैं सबको, कभी कह रहे हैं भक्ति करो, कभी कह रहे हैं कि देखो ये कर्म बंधन में फंसो। पर प्रभुपाद कह रहे हैं बेवकूफ नहीं बना रहे, बुद्धू लोगों के लिए बनाई है भगवान ने ये, जिनको समझ में नहीं आती बात। तो यहाँ पे अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चार, फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्लियर कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो सत्वगुणी होता है, क्षत्रिय रजोगुणी होता है, और इसके बाद क्या है वैश्य, वो उसमें मिश्रण होता है किसका, तमोगुण और रजोगुण का, और शूद्र जो होता है तमोगुण में होता है। और इसको आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो जो लेबर क्लास होती है वो शूद्र होती है जो कि तमोगुण में रहती है। अब देखते ना लेबर क्लास तमोगुण में कैसे होती है, उनको आप कितना भी पैसा दे दो, बोलो कि आप बहुत गरीब हो हम आपको दान देते हैं बहुत सारा, हाँ क्या करेंगे, दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे बस, और ख़त्म कर देंगे उसको, है ना, और सो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। जब तक वो पैसा रहेगा काम नहीं करेंगे, पैसा खत्म होगा फिर काम करना शुरू करेंगे। हमसे एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था तो हमने बोला उनको, क्योंकि व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जो है धन मिलता है। एक व्यक्ति जो है फ़ोन पे ऑर्डर करता है सिर्फ, और वो एक दिन में 1,00,000 रुपये कमाता है, और दूसरा व्यक्ति है वो सारा दिन 8 घंटे मेहनत करता है और उसके बाद उसको 150 रुपये मिलते हैं। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिस्ट था शायद, सबको बराबर मिलना चाहिए। क्यों बराबर मिलना चाहिए, क्वालिफाइड ही नहीं है व्यक्ति। मैं तो फिर तो कहेंगे सरकार को सबको नोबेल प्राइज देना चाहिए, सबको क्यों देना चाहिए, जो क्वालिफाइड होगा उसी को देंगे ना, क्योंकि ये व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, इसको अगर इतना पैसा मिलेगा तो ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये काम करना बंद कर देगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा और पड़ा रहेगा। ये लेबर क्लास है। इसके ऊपर क्या होता है, वैश्य है ना, जो व्यापारी होते हैं मर्चेंटल, ये क्या करते हैं, इनमें मिश्रण होता है रजोगुण का और तमोगुण का, इनमें पैशन होता है काम करने का, है ना, पैशन होता है, पर जो धन अर्जन होता है उसको साथ ही साथ उड़ा भी देते हैं, है ना, और अगर ज्यादा धन हो जाता है तो थोड़े दिन रिलैक्स भी करते हैं, और भी कई चीजों के कारण इनमें तमोगुण का मिश्रण रहता है। और जब क्षत्रिय होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो होता है, वो क्या होते हैं, वो हमेशा पैशनेट रहते हैं, हमेशा मैनेजमेंट देखते हैं, रूलिंग वो होती है उनके अंदर, रूलिंग कैपेसिटी होती है, और वो रूल करना चाहते हैं। और अगर उनको, जैसे अर्जुन है, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम कह रहे मैं जंगल में जाऊंगा, थोड़े दिनों बाद जंगल में तुम जानवरों को मारना शुरू कर दोगे, वहां के लोगों को पकड़ पकड़ के जो मारोगे, तुम कहोगे मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे को चाहिए रूलिंग पावर। और जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं, वो तपस्या करते हैं, अगर उनके जैसे जो रूलिंग जो ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ये धन होता है इनके पास, रॉयल होते हैं, ये रॉयल रहना भी चाहते हैं, और धन होने के बाद भी और धन अर्जन करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं। और तमोगुणी नहीं होते कि सोए रहेंगे, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, कम सोते हैं ये, रजोगुणी लोग कम सोते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। पर जो ब्राह्मण होता है वो कम सोता है, पर वो सत्वगुण के कारण कम सोता है, वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, और उसके पास अगर धन आता है जितनी उसको आवश्यकता है उतना अपने पास रखता है, बाकी आगे दान कर देता है। हमारे मंदिर में कई भक्तों को हम देखते हैं कि अगर उनको कोई दान दे के जाता है तो अभी उनको कोई दान दे के गया, वो शाम तक वो किसी और को दे चुके होते हैं, रखते नहीं अपने पास। और भी बाहर भी कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, सिर्फ मंदिर में नहीं, बाहर भी ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो असली ब्राह्मण होते हैं, तपस्या करते हैं, समो दमो तपो शौचम, क्लीन रहते हैं, हमेशा साफ रहते हैं, तो ये उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जन्म से नहीं बनाया गया, कोई यह ना सोचे कि कोई मन के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण ही होगा, ये जरूरी ये हो सकता है कि क्योंकि उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो ब्राह्मण अपनी फैमिली को देख करके वैसी क्वालिटीज डेवलप करें, अगर वो वैसी क्वालिटीज डेवलप कर लेता है तो वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। जैसे कोई है, कोई वकील है, उसके घर में कोई बेटा जन्म लिया है तो चांसेस हैं कि वो भी वकील बन सकता है ना, अपने पिताजी से सीख करके। पर अगर वो अगर वैसा कल्टीवेशन नहीं करता है, वो कुछ और बनना चाहता है, तो वो बनेगा फिर जो वो बनना चाहता है। आप ये नहीं कह सकते वकील का बेटा वकील, जज का बेटा जज, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर के घर में तुमने जन्म लिया मुझे इंजेक्शन लगा दो, ऐसे नहीं कह सकते आप, है ना। जन्म से कभी भी हम निर्धारित नहीं कर सकते किसी भी वर्ण का। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये वर्णों का निर्धारण होता है किसके हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, गुणों के क्वालिटीज के हिसाब से। तो यहां पे भगवान बता रहे हैं, और इसके अनुसार यदि कोई सरकार अगर इसके हिसाब से मैनेज करती है, आज आज क्यों है संसार में दुख मालूम है आपको, सबसे बड़े दुख के कारण सब लोग परेशान क्यों हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले के टाइम पे लोगों के पास, हमारे मंदिर में प्रवचन दे रहे थे एक बार कृष्ण प्रभु, तो हमारे बता रहे थे कि पहले के समय क्या होता था, लोगों के पास साधन नहीं थे। अगर उनको यहां से पंजाबी बाग जाना है, कितना किलोमीटर है पंजाबी बाग, 26 किलोमीटर है, यहां से उनको जाना है और वापस आना है, कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट पूरा दिन गया, दो दिन नहीं लगेंगे, गोवर्धन परिक्रमा कर देते हैं सब लोग 5 घंटे में पूरा दिन गया है ना? और अगर वहां पे काम करना उसको 2-3 घंटे, तो बस वहीं रहना पड़ेगा उसको फिर, तो है ना, रात में थोड़ा वापस आएगा। और आज सुविधा देखो, एक घंटे में पहुंच जाओगे, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, आपके पास कार है, आप एक घंटे में पहुंच जाओगे, काम करके वापस आ सकते हो, 2 घंटे में सब कुछ खत्म। पहले लोगों को हाथ पे कपड़े धोने पड़ते थे और सर्फ भी नहीं थे, वो रीठे तोड़ करके उसका जो पल्प होता है उसको पानी में भिगो के उससे कपड़े धोते थे। और आज क्या है, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कुछ भिगोना, पहले पानी में उसको भिगो, गर्म पानी में, फिर नहीं, सीधे आप यूज कर सकते हो सर्फ। और तब मशीन भी आपके पास, और ऐसी ऐसी अद्भुत मशीन है कि उसके अंदर कपड़े प्रेस भी हो जाते हैं। पर अब आप एनालाइज करते हैं हम कि पहले के उन उस टाइम के लोगों को देखें जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, वो ज्यादा सुखी थे, उनके पास ज्यादा समय था अपने घर परिवार में देने के लिए, अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा समय बिताते थे, रिलेशन अपने परिवार में उनके ज्यादा अच्छे थे क्योंकि ज्यादा समय देते थे परिवार में। और आज समय बचाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी समय नहीं है, है ना, फिर भी समय नहीं है। तो एक बार हमारे गुरु महाशय ने बोला कि महाराज क्या करें, समय नहीं मिलता, 24 घंटे हैं पूरे, ऐसे लगते हैं ज्यादा होने चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने बोला कि अगर आप भक्त बन जाओगे तो आपके पास 26 घंटे हो जाएंगे। पता है कैसे? बोले भक्त लोग भी वो सब काम करते हैं जो आप कर रहे हो, भक्त लोग भी बिजनेस करते हैं, जैसे आप बाहर रह रहे हैं तो आप बिजनेस करते हैं ना, आप भी भक्त हैं सब, भक्त लोग बिजनेस करते हैं या अगर जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं बाहर, अपना परिवार चलाते हैं, घर में कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल भी जाते हैं, सारे वही काम करते हैं जो आप करते हो, परंतु तो उनके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं जब करने के लिए भी, तो भक्तों के पास 26 घंटे होते हैं। तो क्योंकि क्या है, समय नहीं है आज किसी के पास, जबकि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कई कई दिनों तक जो है बेटा अपने पिता से नहीं मिल पाता, जब बेटा उठता है तो पिता जा चुके होते हैं, और जब पिताजी आते हैं तो बेटा सो चुका होता है, या फिर जब बेटा आता है तो पिताजी सो चुके होते हैं। हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, कभी कभी संडे को, होता है ना ऐसा, आपके साथ अनुभव है ऐसा किसी को? कई लोग हैं ऐसे यहाँ, और आजकल तो पति पत्नी जॉब करते हैं तो कई वैसे पति पत्नियां भी हैं जो नहीं मिल पाते कई कई दिनों तक। पति जो है वो सुबह जाता है 7 बजे जॉब पे और पत्नी जाती है 10 बजे, उठती है 8 बजे, रात को लेट आते हैं, पति सो चुके होते हैं क्योंकि वो भक्त हैं, सुबह सुबह जॉब करते हैं, टाइम ही नहीं है, जबकि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना। इसीलिए ये वर्ण आश्रम धर्म की आवश्यकता है। जब ये वर्ण आश्रम धर्म था पृथ्वी पर तब लोगों के पास समय था। वर्ण आश्रम धर्म में क्या होता है कि सब लोग वही ड्यूटीज करते हैं जो उनकी क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज करते हैं, जिसके अंदर क्षत्रिय की जो क्षत्रिय है वो रूल करता है, उसको गवर्नमेंट क्या देती है, उसको एक एरिया देती है, जमींदार बनाती है उसको, कुछ ऐसे रूल करने के लिए कोई जगह देती है, वो वहां पे रूल करता है, वहां से टैक्स कलेक्ट करता है, देता है। ब्राह्मण है, गवर्नमेंट क्या करती है, ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज को करो। शूद्र जो है उसको ऐसा नहीं बोलते कि तुम शूद्र हो भी तुम जाके जो है प्रधानमंत्री बन जाओ, है ना, शूद्र बने हुए प्रधानमंत्री कैसे चलेगा देश सही, शूद्र को शूद्र वाले काम दिया जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सब लोग अपने अपने गुणों के अनुसार जब काम करते हैं तो काम सही होते हैं, झगड़े कम होते हैं, समय ज्यादा बचता है। पहले क्या होता था कि लोग जब खेती करते थे, 4 महीने आते हैं चतुर्मास बोलते हैं जिसको, जिसमें बारिशें होती हैं, उसमें कोई काम नहीं करना होता, खेत में कोई काम नहीं करता उन दिनों, वो क्या करते थे, छुट्टी, 4 महीने की छुट्टी, और 4 महीने के बाद क्या होगा, फसल कटेगी, फिर वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वैसाखी बोलते हैं ना, हाँ वैसाखी, उस पर फसल कटेगी और उसके बाद इतना धान और इतनी सब चीजें निकलेंगी, इतना अन्न हो जाएगा उनके पास और इतनी सुविधाएं हो जाएंगी कि आगे के 4 महीने आराम से निकलेंगे। इस तरीके से करते थे महाप्रभु के भक्तगण। क्या करते थे कि जब चतुर्मास आता था तो वो अपने खेत, तो उनके पानी दे दिया, सब कुछ हो गया, अब तो बारिश से होता रहेगा, बीज बो दिया, हल चला दिया, वो सबके सब चले जाते थे जगन्नाथपुरी, 4 महीने जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, वहां पे महाप्रभु के साथ नर्तन गायन कीर्तन उल्लास, नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे और आनंद लेते थे, प्रसाद खाते थे। और कथा श्रवण ये सब होता था, रथ यात्रा होती थी, और उसके बाद सब वापस आते थे। और तब तक फसल काटने का टाइम हो गया था, फसल काटेंगे फिर और फिर चलेगा सही से। तो इस तरीके से जो है पहले की व्यवस्था थी और सरकार प्रोवाइड करती थी ऐसा। और फिर जब ये धन जो अन्न निकलेगा इसमें से, अब वो जो वैश्य कम्युनिटी है वो क्या करती है, वो जो शूद्रों को एंगेज करती है अपने साथ। शूद्र लोग क्या करेंगे, शूद्र लोग उसमें हल चलाते हैं, थोड़ा ना कि वैश्य खुद ही हल चलाता रहेगा, वो खुद भी चलाता है, अपने काम खुद ही करता है, परंतु जो लेबर क्लास है उसको एंगेज करता है। कैसे कैसे काम होते हैं कि जैसे गाय हैं, उनके पास गाय होती है, देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। अभी भी मायापुर में कुछ भक्त हैं जो ऐसा कर रहे हैं, गायें होती हैं उनके पास 10-12 गायें हैं, कुछ गायें हैं, गायें दूध देती है, उससे उनके घर की सारी दूध की आवश्यकता पूरी हो गई, कुकिंग की भी कई चीज़ें उसमें बनती हैं, दही भी बनता है, मक्खन भी निकल, घी भी निकल आया, मक्खन भी निकल आया, और क्या नाम है, दूध भी बन गया, और आवश्यकता है तो पनीर और लस्सी जो भी आपको चाहिए वो भी निकल आया, ठीक है। अब गाय जो गोबर देती है उससे क्या बन गया, खाद बन गई, और फ्यूल भी बनेगा, दोनों चीज, खाद भी और फ्यूल, दोनों चीज़ों की व्यवस्था हो गई। और जो गाय का मूत्र होता है उससे क्या होगा, हाँ, शुद्धिकरण, जो ये बनाते हैं ना कीटनाशक मेडिसिन बनाते हैं जो अपनी फसल के ऊपर डालते हैं, अगर आप गाय का मूत्र यूज़ करते हैं उसमें, ये नहीं कि सीधा मूत्र डाल दो, उसमें कुछ पानी उसे डाइल्यूट करना पड़ता है, डाइल्यूट करके डालते हैं, तो ये जो कीटनाशक मेडिसिन होती हैं उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और प्योर होता है एकदम। तो मेडिसिन भी बन गई, खाद भी बन गई, और ईंधन भी बन गया, और इसके अलावा, और अब गाय क्या खाएगी, क्योंकि वो जो फसल उगेगी उसके अंदर जो घास, आपने देखा है कभी ना, धान जब उगती है तो उसमें से सब कुछ थोड़ा खाते हैं हम लोग, धान निकाल देते हैं, चावल होता है या गेहूं होता है वो निकाल देते हैं, तो घास थोड़ा खाता आदमी, हाँ, जो भूसा होता है वो गाय खाती है, गाय गाय अन्न नहीं खाती, गाय वो भूसा खाती है। तो इस तरीके से कितनी सुंदर व्यवस्था है, गाय वो भूसा खाएगी, आपको दूध देगी, उससे आपकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई। अब उसमें आपने जो फसल उगाई उसमें आपने पेड़ हैं, आपके पास सब्जी उगेगी, सब कुछ उगेगा आपके पास ही, है ना, सारी व्यवस्था घर में ही। कपास लोग उगा के खुद अपना कपड़ा बनाते थे, अभी भी आप जाओगे मायापुर में ऐसे आपको मिलेंगे चरखा चलाते हुए अपने कपड़े बनाते हुए। क्या है ये, कितनी सुंदर व्यवस्था है, सब कुछ हो रहा आराम से। और फिर जो लेबर क्लास है वो इन सारे कामों में एंगेज रहती है साथ में, वो फसल कटवा रही है, और जो वैश्य है वो क्या करता है, वो ध्यान रखता है कि गायों को कोई प्रॉब्लम होगी वो बताते हैं, तो उनको अरेंजमेंट करते हैं, वो जब धान निकलता है तो उसको बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो टैक्स लेते हैं, तो उनको क्या देते हैं टैक्स में, अन्न देते हैं टैक्स में। आपने सुना होगा ना ब्रज में गोपियाँ जो है दूध और मक्खन जो है टैक्स देती थी कंस को, जो ब्रज से कंस के लिए टैक्स जाता था राजा के लिए, वो मक्खन और ये सब टैक्स देते हैं, टैक्स के रूप में पैसा नहीं देते, अन्न देते हैं, ये सब टैक्स देंगे। और गवर्नमेंट क्या देगी, और ये साथ ही साथ क्या करते हैं, ब्राह्मणों को दान भी देते हैं, और जो लेबर क्लास इनके साथ काम कर रही है उनका भी पूरा होता है। अब जब गवर्नमेंट है उनके पास, जब ये सब चीज़ों की व्यवस्था पूरी रहती है और उसके पास धन भी है, क्योंकि ये मर्चेंट जो हैं ये साथ में क्या करते हैं, जो दूसरा व्यक्ति, ये लोग धान उगा रहे हैं, दूसरा चावल उगा रहा है, तो उसके साथ रिप्लेस करते हैं कि तुम्हें चावल की आवश्यकता है, तुम हमसे चावल लो, हमें अपना वो दो, क्या नाम है, गेहूँ दो, इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, हाँ, बाटर सिस्टम, इस तरीके से लेन देन होता है। और कहीं कहीं पे जैसे कपड़ा और सब कुछ है तो वहाँ पे सोने के सिक्कों का भी लेन देन होता है। तो गवर्नमेंट के पास अब सारी व्यवस्था पूरी है, उसके पास पूर्ण अन्न है, पूर्ण धन है, वो क्या करेगी, जो व्यक्ति के पास आवश्यकता, जो व्यक्ति गरीब है, बीमार है, बूढ़े हो गए है ना, जिनके पास कोई देखने वाला नहीं है, उनकी टेक केयर करेगी गवर्नमेंट। जो ब्राह्मणाज हैं, ब्राह्मणाज की टेक केयर करेगी, उनको जितने धन की आवश्यकता वो देगी। ब्राह्मण ये सब काम नहीं करेंगे, छेंगे बाचेंगे नहीं, ब्राह्मण के पास गाय हैं उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, पर अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। और वैसे ये वैश्य लोग भी दान देते हैं, और इस तरीके से कम्युनिटी बहुत सुंदर तरीके से चलती थी, चल रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं। और अगर ये इस तरीके से सिस्टम आज हो जाए तो सबको दोबारा से सुख असली वो मिलेगा। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने 50% काम कर दिया, 50% अभी बाकी है। ये कम्युनिटी इस्टेब्लिश करना, ये जो कम्युनिटी है वर्णाश्रम धर्म, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, पर प्रभुपाद जी चाहते थे ये। प्रभुपाद जी ने बताया है भागवतम के 6 कैंटो में कि इम्पॉसिबल है। खुद ही प्रभुपाद चाहते थे इस्टेब्लिश करना, खुद ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल है इस्टेब्लिश हो आज के टाइम पे, क्योंकि पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सब लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति को भक्त बनना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है दोबारा डेवलप करने की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिटी ऐसी डेवलप कर सकते हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसी डेवलप कर सकते हैं जो एग्जाम्पलरी हो, जो दुनिया को दिखाएं कि कुछ है, एक ऐसा भी सिस्टम है जिसमें लोग सुखी रहते हैं। हमारे कुछ हमारी फार्म कम्युनिटीज हैं जहाँ पे आज भी आज ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। हंगरी में है और ब्राज़ील में है, कुछ जगहों पे हमारी ऐसी फार्म कम्युनिटीज है जहाँ पे सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, और भक्त लोग बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, सब कुछ खुद बनाते हैं, उनके पास हर चीज़ की व्यवस्था, अपना ईंधन वो खुद बनाते हैं, गैस खुद बनाते हैं, खाने पीने की जितनी आवश्यकताएं हैं, कपड़े सब बनाते हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन होती है सब खुद करते हैं, वो बहुत सुखी हैं। परंतु ये एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। इसीलिए प्रभुपाद जी इसके अंदर कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन ये दे रहे हैं कि इससे ऊपर उठ जाया जाए, क्योंकि इसको एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। श्रीमद भागवतम के अंदर, श्रीमद भागवतम 1st canto 2nd chapter text number 13, वहां पे बोल रहे हैं अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागयो स्वनिष्ठिता धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। वैसे तो भगवान ने बनाया है कि भैया जो बद्ध जीव हैं आए, परंतु इसका मकसद क्या है कि इसके तरीके, इसको अगर फॉलो करेंगे हम लोग तो धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, ब्राह्मणों से कुछ सुन रहे हैं, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेवल पे आएंगे। तो इसका असली मकसद यही है कि अगर हम छोड़ के आ भी गए हैं, है ना, विरोध करके यहाँ पे आ भी गए हैं, तो अभी दोबारा से अपनी उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, इसके लिए ये बनाया गया है। कुछ लोग हैं इसके बाहर, अब हम सब इसके बाहर ही हैं ऑलमोस्ट, तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे उसके स्तर पे आएंगे। तो इसलिए फिर इसके तुरंत इस श्लोक के बाद जो टेक्स्ट 14 है उसमें क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, तो इसके लिए क्या किया जाए ज्यादा अच्छा है कि धीरे धीरे कल्टीवेशन करने से ज्यादा अच्छा है, क्या है वो, तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पतिम श्रोतव्य की तव्यश्च धेय पूजश्च नित्यदा। असली पर्पस ही यही है इस वर्णाश्रम धर्म का कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के स्तर पे आ जाएं। तो इसलिए हम इसके धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस को क्यों फॉलो करें, हमारे पास जब एक्सप्रेस एलिवेटर है तो हम उसको क्यों ना यूज करें। प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं एक्सप्रेस एलिवेटर, वो क्या है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च धेय पूज्यश्च नित्यदा। हमें क्या करना चाहिए, भगवान नित्यदा क्या करें, जो एकेन मन से अपने मन को एक स्थिर करके जो भगवान है जो सब सारे जीवों का पालन करने वाले हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति पूरे विश्व के जो पालन करता है, पूरे विश्व के जो स्वामी भगवान कृष्ण हैं, उनके विषय में श्रवण करें जैसे आप सब कर रहे हैं, और उनके का गुणगान करें, उनका कीर्तन करें जैसे आप सबकी कृपा से हमें अवसर मिला बोलने का। और दूसरा विधि क्या है इसका जो और भी पावरफुल है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इन नामों का कीर्तन करें और श्रवण करें। जब एक व्यक्ति कीर्तन कर रहा है तो सब सुने और सब उसके पीछे से गाएं जैसे हमने पहले किया था। तो ये जो विधि है श्रोतव्य कीर्ति तव्यश्च धेय पूज्यश्च नित्यदा, निरंतर उन्हीं का चिंतन करें और उन्हीं की पूजन करें, और उनके पूजन का सर्वश्रेष्ठ विधि जो है इस कलयुग के अंदर बताई गई है, क्या बताई गई है वो, कृष्ण वर्णम तुषाकर्षणम संगम पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधशा, कि यज्ञ संकीर्तन प्राय आज के युग के अंदर जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण से अभिन्न है, उनकी पूजा जो करने वाले लोग हैं वो विश्व के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, परंतु बुद्धिमान वो तभी कहलाते हैं, हमारे आइंदर प्रभु बोलते थे इसके लिए, बोलते थे दोज हु हैव सम गुड ब्रेन सब्सटेंस ओनली दे कैन अंडरस्टैंड। कि आज के युग में जो भगवान की सेवा की जाती है वो संकीर्तन के माध्यम से की जाती है, हरे कृष्ण कीर्तन के माध्यम से। तो इसके माध्यम से जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हम ग्रेजुअली इस तरीके से नहीं जो वर्णाश्रम धर्म के तरीके से जाते हैं, बहुत फास्ट एलिवेटर से, पर एलिवेटर भी ऐसा तो नहीं होता ना पंग ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है, जाता है धीरे धीरे। तो हमारी ग्रेजुअल हमारी क्या होती है, कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू होती है। और आप सबको अनुभव होगा जो लोग जप कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं भक्तों के साथ, सबको अनुभव होगा कि हमारे को हमारा पहले का जीवन और आज का जीवन बदल चुका है ना, ये इस भगवान के श्रवण कीर्तन के माध्यम से। और बता, और अगर इसके साथ ही साथ भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड शो करते हैं कि हम सिर्फ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हम इस जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है हम इसके अंदर होते हुए भी इसका पालन नहीं करेंगे वर्णाश्रम धर्म का, भक्त लोग ऐसा नहीं करते, भक्त लोग साथ साथ पालन करते हैं। अगर कोई सन्यासी है तो वो सन्यासी के जो उसके नियम है उसका पालन करता है, कोई ब्रह्मचारी है तो उसके नियमों का पालन करता है, गृहस्थ हो तो अपने नियमों का पालन करता है। ऐसे बिल्कुल पक्की तरह से तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। हमारे एक भक्त हम अमेरिका में रहते थे तो वो क्या करते थे, गृहस्थों का एक नियम है कि क्या करना चाहिए कि अगर जब कुकिंग कर ली घर में तो खाने से पहले मंदिर से बाहर जाना, घर से बाहर जाना चाहिए, पता पूछना चाहिए आवाज दे के कोई भूखा तो नहीं है, अगर कोई भूखा है किसी को प्रसाद की आवश्यकता है तो हमारे घर पे आए, पहले उनको खिलाना चाहिए। और पहले के समय पर ऐसी परेशानी होती नहीं थी, कुछ सन्यासी होते आते जाते थे तो वो आके प्रसाद ले लेते थे और बनाते थे कुछ ज्यादा कुकिंग की लोग खा लेंगे। आज भी कई जो अगर आप गाँव में जाओगे, हम गए थे उड़ीसा में, एक वहाँ पे 36 गाँव हैं एक साथ, सारे के सारे वैष्णव रहते हैं वहाँ पे, इस्कॉन के भक्त नहीं है वो, परंतु वो ट्रेडिशनली वैष्णव ही है सारे, उनकी पूरी परंपरा ही वैष्णवों की है। तो वहाँ पे आज भी ये नियम का पालन है, उनके घर में ज़्यादा कुकिंग होती है। अगर हम होली के दिन वहाँ से निकल रहे थे तो लोग एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे थे, गांव में तो यही करेंगे ना, उनके पास थोड़ा यहाँ ग्रीस थोड़ा लगाएंगे वो यहाँ के लोगों की तरह, कीचड़ फेंक रहे थे, रंग फेंक रहे थे गुलाल। तो मैंने क्या किया था, पहले शीशा खोल दिया था, सबको सर्दी लग रही थी फिर भी मैंने गाड़ी का शीशा खोल दिया था क्योंकि मुझे क्या है सफोकेशन हो रही थी गाड़ी में। तो वो जब जैसे हम उस गांव के अंदर एंटर किए तो मैंने फटाफट शीशा बंद कर दिया, तो जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी उसने बोला क्यों बंद कर दिया, आपको अभी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बोल रहा था अगर बंद होगा तो मुझे वॉमिटिंग होगी। मैंने कहा कि सब लोग कीचड़ डाल देंगे अभी, कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, ये सब देखेंगे ठाकुर के आदमी आ रहे हैं कुछ नहीं करेंगे। और हमने शीशा खोल दिया और हमने क्या देखा कि जैसे ही उन लोगों ने हमें देखा, दूर दूर से उन्होंने देखा कि लाल कपड़े के पहने हुए कुछ मुंडन किए हुए साधु आ रहे हैं, तो सब लोग अपने घरों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सब ने कीचड़ डालना बंद कर दिया। आज भी ऐसे लोग हैं, भले ही वो इस्कॉन में नहीं है पर साधु हैं पक्के। तो इस तरीके से वो हमारे जो भक्त हैं वो क्या करते थे, अब अमेरिका में थे उनको पता अगर मैं बोलूंगा खाने के लिए आ जाओ तो सब आ जाएंगे, मतलब बोले शास्त्रों में लिखा हुआ पालन करना चाहिए, तो अपने घर के बाहर जाते थे और पंजाबी में बोलते थे, ये कोई भूखा है कि आ जाए, कुछ कैसे बोलेंगे जिन्नू प्रसाद चाहिए आ जाए तो पंजाबी में बोलते थे, कोई आता ही नहीं था, तीन बार बोलते थे फिर आगे खाते थे ये तो एक ऐसा है कि जिसका वास्तव में पालन करना बहुत मुश्किल है, अगर वो बेचारा इंग्लिश में ही बोलेगा तो सब लोग आ जाएंगे उसके घर पे, भूखा मरेगा वो आज के। परंतु जितना संभव होता है भक्त लोग पालन करने का प्रयास करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कर्मकांडी, जो कि इन नियमों का भक्तों से ज्यादा कड़ाई से पालन करते हैं, बहुत ज्यादा कड़ाई से। आप देखोगे सन्यासी लोग क्या पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं ना हमारे इस्कॉन में, देखा आपने, सन्यासी को कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ चादर लेनी चाहिए। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सन्यास लेने के बाद बहुत ही कड़ाई से पालन करते हैं, कुर्ता नहीं पहनते हैं, चादर पहनते हैं, सर्दी में भी गर्म चीजें नहीं लेते हैं। पर यहां पे जो सन्यासी क्या कर रहे हैं, ये एक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, सततम नहीं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, क्या है वो श्लोक, स्मर्तव्यम विष्णु विस्मृतव्यम न जायते, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मृतव्यम न जायते, सर्वे विधि निषेधेषु एतो एव किंकरा। कि जितने भी विधि निषेध हैं, जो विधि है ना कि भैया सन्यासी को ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, उन सब और जिसके लिए भी जो भी विधि निषेध हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका वो सब के सब एक रूल के और रेगुलेशन के क्या हैं, दास हैं। उनका पर्पस एक ही है, क्या है, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मृतव्यम न जायते, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण का विस्मरण ना करो। तो इस पर्पस को फॉलो करने के लिए अगर इस एक नियम का तोड़ा जा रहा है कि भैया सिले हुए कपड़े पहने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ चादरें पहन के हम जाएंगे विदेशों में प्रचार करने, है ना, ऐसी चादर रख के और बदन नंगा होगा, लोग कहेंगे कहाँ के आ गए ये लोग, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हैं, है ना। इवन जब भक्तों के लाल कपड़े पहन के गए थे तब भी कहते अनसिविलाइज्ड हैं, पागल लोग हैं ये, परंतु फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। पर अगर चादर ही पहन के चले हैं सिर्फ ऐसे रख के, कुर्ता भी नहीं पहना, नंगे पाँव हैं, चप्पल भी नहीं पहनी, कहेंगे पागल लोग हैं ये, हैं, कोई सुनेगा क्या। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हाँ मैं तो प्रचार कर सकता हूँ एक पेड़ के नीचे बैठ के भी, भक्त तो जो है एक पेड़ के नीचे बैठ के भी कथा कर सकता है, परंतु हम इतने बड़े बड़े आलिशान मंदिरों की व्यवस्था इसलिए करते हैं, एसी रूम इसलिए बनाते हैं, क्योंकि लोग पेड़ के नीचे नहीं सुनेंगे कथा को, लोगों को चाहिए ऐसी फैसिलिटीज अपने लिए नहीं। ये शिला प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी ऐसा कर रहे थे, उन्होंने अपना जीवन बिताया राधा दामोदर मंदिर में, आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का रूम, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, पहले तो जब प्रभुपाद जी इस्कॉन एस्टेब्लिश किए थे उससे पहले तो बिल्कुल टूटा फूटा रूम था, वो पानी भी खुद भर के लाना पड़ता था बाल्टियों में उनको, इतनी बड़ी उम्र में। तो प्रभुपाद करते थे ऐसे, पर ये हम सब बाहर जो बद्ध जीव है, हम सब लोग, हम सब के लिए, हम सब भी कृष्ण का हमेशा स्मरण कर सके, कभी उसका विस्मरण ना करें, इसीलिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को अगर त्याग करते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है। परंतु दूसरी तरफ कर्मकांडी लोग हैं जो कि इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ही कड़ाई से पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के जो नियम उनका पालन करते हैं, ऐसे कई आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो मिलेंगे आपको। परंतु फिर भागवतम बोलती है, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादेन यदि रति श्रम एव ही केवलम यूजलेस एफर्ट्स। अगर कोई व्यक्ति अपने सारे धर्मों का, अपने पति का, जो पति का धर्म है, पत्नी के पति जो भी है वो पालन करता है, पत्नी अपने धर्म का पालन करती है, बच्चे अपने धर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता है, सब अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं पूरी कढ़ाई से, जैसा भगवान बोल रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में उनकी रुचि जागृत नहीं हो रही, तो ये सारे जो कढ़ाई से किए गए पालन है वो सब क्या हो गए, श्रम एव ही केवलम यूजलेस, यूजलेस एफर्ट्स, जितने इसके अंदर परिश्रम किया वो सब क्या है, यूजलेस। इसीलिए हमारे को क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जहां तक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं हम वहां तक करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ईगो सेंट्रिक होकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भक्त बन गए अब हम जो मर्जी कर सकते हैं, परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन सारे धर्मों का पालन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकें। यही हमारे इस श्लोक का पर्पट है असलियत में, जो प्रभुपाद जी आखिरी लाइनों में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी किसी भी श्लोक का जो तात्पर्य देते हैं तो आप देखेंगे उसकी आखिरी दो तीन लाइनों के अंदर प्रभुपाद उसको ओरिजिनल कंक्लूजन देते हैं जो प्रभुपाद जी उसमें बताना चाहते हैं, और इसके आखिरी में क्या बता रहे हैं, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हो जाता है। जैसे ही कोई भक्ति करने लगता है, भले ही जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए, है ना, वो एक क्षत्रिय परिवार में थे, यदुवंशी थे, और उससे पहले वो परिवार में रहे किनके, वैश्यों के, ग्वाले के रूप में, परंतु वो उससे इफेक्टेड नहीं हुए, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उससे, क्यों, क्योंकि वो सारे गुणों से परे हैं, वो दुनिया को दुखाने के लिए वैसे रोल कर रहे हैं परंतु उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है। वैसे ही भक्त इसी संसार के अंदर होते हुए भी इस संसार से अलग होता है। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे एक नारियल होता है ना, उसके अंदर जो खोल होता है, वो उसके अंदर जो क्या बोलते हैं इसको, जो गरी होती है, जब वो सूख जाता है, जब वो ड्राई हो जाता है, जब वो ड्राई फ्रूट बनता है, आप उससे हलवा कुक करते, हलवे में डालते हैं कुक करके, तब उसकी स्थिति क्या होती है, वो उस शेल के साथ चिपका हुआ नहीं रहता, वो शेल के अंदर होते हुए शेल से अलग होता है। वैसे ही जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस होते जाते हैं, भले ही संसार के अंदर हो, पर इस संसार से हम अटैच नहीं होते। उससे पहले जब वो अटैच था, जैसे ही शेल टूटेगी वो भी टूट जाएगा, गरीबी टूट जाएगी, है ना, पर जब वो अटैच नहीं है, डिटैच हो गया उससे, शेल टूटेगी पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आएगी, जब तक हम मटेरियलिस्टिक हैं हमें भी अफेक्ट करेगी, पर अगर हम मटेरियलिस्टिक नहीं है, हम भक्त बन गए, मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम हमें अफेक्ट नहीं करेगी। तब हमारे को प्रयास करना चाहिए इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति में लगे और कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्तर पे आए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण कथामृत की। किसी का कोई एक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न है? दोनों चीजें। जैसे वो जन्म में उसको जन्म मिला, वो पिछले जन्म में तमोगुणी था, उसको तमोगुणी जन्म मिला, वो इस जन्म में भी तमोगुणी है ना। अभी वो तमोगुणी है, ज्यादा सोता है, सब कुछ ज्यादा सब कुछ खराब करता है ना। तमोगुणी होते हुए परंतु अपने तमोगुण के अंदर होते हुए जो उसका लेबर क्लास का काम है वो ठीक से करता है, वो है ना। अपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है एटलीस्ट उसको फॉलो करता है सिर्फ, तो इससे क्या होगा, उसका प्योरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, नहीं उससे क्या होगा कि क्योंकि वो उस गुण के अंदर एटलीस्ट जो उसकी एक्टिविटीज है उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, तो उसका प्योरिफिकेशन होगा, वो धीरे धीरे रजोगुण के स्तर पे आ जाएगा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। आप एक मिनट, हम बताना चाहेंगे अभी यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, तो किसी को जो भी प्रश्न हो वो अलग से पूछ सकते हैं। यहाँ पे लेट हो रहा है, सबको प्रसाद लेना है और सबको घर भी जाना है, हमने लेट कर दिया यहाँ पे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपसे हम अलग से प्रश्न आपको उत्तर दे सकते हैं।
हरे कृष्णा। सम तीन बार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतने सुंदर प्रवचन से लाभान्वित किया हम सबको। ठीक है। अरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कहाँ चुके हरि। तो आप सबके लिए प्रसाद रेडी है और आप कूपन्स आई थिंक सबको मिल चुके हैं, तो आप अपने कूपन्स लेके प्रसाद के लिए चले जाइए। और आप सबका भी धन्यवाद, थोड़ा आप लेट हुआ बट आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत इंटरेस्ट से सुना, तो आप सभी आते रहिए इस क्लास में रेगुलरली और अपने भी जिन रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको लेके आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
पता है हमारी करताल गुम हो गई वहाँ पे कल।
हाँ मिल गई वहाँ के बाद।
हरे कृष्ण। ये भगवत गीता जिनके पास है वो बाहर भगवत गीता को है टेबल पे रख दीजिए प्रसादम हॉल में जाने से पहले।